एक, भक्ति आंदोलन एक, एक समग्र राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष की खरी तथा सही पहचान कराने वाली अब तक दो ही ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, जिन्हें प्रायः सभी ने महान तथा युगांतरकारी घटनाओं के रूप में रेखांकित किया है। इनमें से एक घटना का संबंध मध्यकाल से है तथा दूसरी का आधुनिक काल से। प्रस्तुत निबंध में हम मध्यकाल की युगांतरकारी घटना की कुछ चर्चा करेंगे तथा उसके दूसरे अंश के संबंध में आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अपनी मौलिक चिंताओं तथा चर्चा को इस कारण विस्तार से प्रस्तुत करेंगे कि आचार्य कदाचित पहले विद्वान हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को उसके मूलवर्ती स्रोतों तक जाकर पहचाना है तथा तमाम सारी भ्रांतियों का निराकरण करते हुए हमें उसकी सही पहचान दी है। स्पष्ट है कि मध्यकाल की यह युगांतरकारी महान घटना भक्ति के आंदोलन का उद्भव तथा प्रसार है। इस आंदोलन में पहली बार राष्ट्र के एक विशेष भूभाग के निवासी तथा कोटि कोटि साधारण जन ही शिरकत नहीं करते, समग्र राष्ट्र के शिराओं में इस आंदोलन की ऊर्जा स्पंदित होती है। एक ऐसा जबरदस्त ज्वार उफनता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब मिलकर एक हो जाते हैं, एक सब एक दूसरे के प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और मिलजुल कर भक्ति के एक ऐसे विराट नद की सृष्टि करते हैं, उसे प्रवाहमान बनाते हैं, जिसमें अवगाहन कर राष्ट्र के कोट कोट साधारण जन सदियों से तप्त अपनी छाती शीतल करते हैं, अपनी आध्यात्मिक तृष्णा बुझाते हैं, एक नया आत्मविश्वास जिंदा रहने की, आत्मसम्मान के साथ जिंदा रहने की एक शक्ति पाते हैं। आधुनिक युग में इसी प्रकार की युगांतरकारी घटना के रूप में हमारा स्वाधीनता आंदोलन गतिशील होता है, जिसके तहत सदियों की साम्राज्यवादी गुलामी से मुक्ति के लिए राष्ट्र के कोटि कोटि जन अपने वर्ग वर्ण प्रादेशिक अस्मिता धर्म जात संप्रदाय के से संबद्ध संकीर्णता को जलाकर भस्म कर अपना सामूहिक बलिदान देते हैं, एक विराट स्वाधीनता के यज्ञ में सहभागी बनते हैं। कहना न होगा कि ये ही दोनों युगांतरकारी घटनाएं एक उदात्त राष्ट्रीय जागरण की सूचक हैं तथा एक राष्ट्र के रूप में हमारी सबसे मूल्यवान धरोहर हैं। जहां तक मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का सवाल है, वह मूलतः एक धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सामने आता है। सच पूछा जाए तो अधिकांशतः एक धार्मिक आंदोलन के रूप में ही उसकी पहचान हमें होती है। अनेक लोगों ने उसके इस मूलवर्ती धार्मिक चरित्र के नाते उसकी प्रगतिशील सामाजिक अंतर्वस्तु की ओर सम्यक ध्यान नहीं दिया है। धर्म को साधारण जन को बरगलाने तथा भरमाने वाली प्रवृत्ति मानते हुए उसे एक मध्यकालीन दकियानुषी प्रवृत्ति को उभारने वाला तथा इस प्रकार साधारण जन को उसकी आवश्यक सामाजिक चेतना से परांगमुख करने वाला आंदोलन तथा अभियान मानकर उसकी व्याख्या की है। इस प्रकार के विद्वान न केवल युग विशेष के वास्तविक चरित्र को सही रूप से पहचानने से इनकार करते हैं, वे किसी युग के अंतर विरोधों तथा उनके पीछे काम कर रही सामाजिक आर्थिक शक्तियों को भी न पहचानने के दोषी हो जाते हैं। मध्य युग जैसा कि सामाजिक इतिहास के बीच से उभरता है और भारत में ही नहीं यूरोप तथा दुनिया के अन्य देशों में अपनी पहचान कराता है, अपने प्रत्येक क्रियाकलाप के मूल में धर्म के केंद्रीय स्थिति को सूचित करता है। अतएव मध्य युग में उभर कर सामने आने वाला कोई भी जनतांत्रिक अभियान धर्म की चौहद्दियों के भीतर ही अपनी अभिव्यक्ति करता है। यूरोप के महान सुधार आंदोलन का उल्लेख करते हुए लुडविक फायरबाख नामक अपनी कृति में एंजल्स लिखते हैं, मध्य युग ने धर्म दर्शन के साथ विचारधारा के अन्य सभी रूपों दर्शन राजनीति शिक्षा शास्त्र को जोड़ दिया और उन्हें धर्म दर्शन की उपशाखाएं बना दिया। इस तरह उसने हर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को धार्मिक जामा पहनाने के लिए विवश किया। आम जनता की भावनाओं को धर्म का चारा देकर और सब चीजों से अलग रखा गया, इसलिए कोई भी प्रभावशाली आंदोलन आरंभ करने के लिए अपने हितों को धार्मिक जामे में पेश करना आवश्यक था। जैसा कि श्री के दामोदरन ने लिखा है, एंगेल्स का यह कथन 14वीं तथा 17वीं शताब्दी के काल के भारत पर भी समान रूप से लागू होता है। भारतीय चिंतन परंपरा 327। यही नहीं, इस संदर्भ में यह धर्म के बारे में मार्क्स के जिस कथन को बहुधा उद्धृत किया जाता है और जिसके आधार पर धर्म को जनता के लिए अफीम मानते हुए उसकी जन विरोधी भूमिका को स्पष्ट किया जाता है, उसके बारे में भी हमें मार्क्स के सही आशय को जान लेना चाहिए। जनता को बरगलाने तथा उसकी वास्तविक स्थिति से उसे भरमाने में धर्म की वस्तुतः यही भूमिका है जिसका मार्क्स ने उल्लेख किया है, किंतु प्रायः इस बारे में मार्क्स को अधूरा ही उद्धृत किया जाता है और इस अधूरी समझ के नाते हम जनता के धर्म के प्रति आकर्षण तथा लगाव को उसके यथार्थ संदर्भों में नहीं पहचान पाते और कभी कभी धर्म से बेइंतहा जुड़ी हुई यह जनता भी हमें नितांत मूढ़ प्रतिगामी तथा स्वतः अपने हाथों पर अपने पैर कुल्हाड़ी मारने के नाते संवेदना सहानुभूति तथा समर्थन की योग्य नहीं मालूम देती। इस विषय पर मार्क्स का संपूर्ण कथन निम्नलिखित है। धर्म पीड़ित प्राणी की कराह है, वह इस हृदयहीन जगत का हृदय है। ठीक उसी प्रकार जैसे वह आत्महीन परिस्थितियों की आत्मा है, यह जनता के लिए अफीम है। श्री के दामोदरन की बात को यहाँ भी हम अपना मंतव्य स्पष्ट करने के लिए उद्धृत करेंगे। सवाल है कि जो धार्मिक विचार प्रकृति की बाह्य शक्तियों के कल्पनातीत प्रतिबिंबों के रूप में मानव मस्तिष्क में मनुष्य की एकदम प्रारंभिक अवस्था में उद्भूत, क्यों विज्ञान के द्वारा प्रकृति के रहस्यों के स्नेह स्नेह उद्घाटन के बावजूद भी धर्म मानव मस्तिष्क में बना रहा। श्री दामोदरन का विचार है कि इन प्रश्नों का उत्तर संभवतः इस तथ्य में निहित है कि अपने विकास की एक विशेष अवस्था में धर्म सामाजिक गुण प्राप्त कर लेता है और इतिहास की आर्थिक और सामाजिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला बन जाता है। इसी रूप में आर्यों के देवताओं ने जो आरंभ में प्रकृति की शक्तियों का मूर्तिकरण थे सामाजिक महत्व और सामाजिक गुण अर्जित कर लिए। इस रूपांतरण से लोगों को एक हद तक सांत्वना और काल्पनिक सुख भी मिला और जीवन की कठिनाइयां झेलने में उन्हें आसानी मालूम हुई। इसके साथ ही धर्म वास्तविक पीड़ा की अभिव्यक्ति और वास्तविक पीड़ा के विरुद्ध प्रतिरोध की भी अभिव्यक्ति है। मार्क्स का धर्म विषयक कथन इसी बिंदु पर अपने सही अर्थ के साथ जाना जा सकता है और उसे सही आशय में ग्रहण करके ही हम उन तमाम मध्ययुगीन जन अभियानों को उनके यथार्थ में जान और समझ सकते हैं जो ऊपर से धर्म प्रेरित दिखाई देते हैं या जिनमें जनता के धार्मिक लगाव का गहरा योग है। श्री दामोदरन के अनुसार मार्क्स द्वारा धर्म की दी गई परिभाषा को जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है प्रायः गलत तरीके से समझा और समझाया गया है। इस परिभाषा में वस्तुतः दो पहलुओं पर जोर दिया गया है। धर्म एक साथ ही मस्तिष्क की शोकाकुल अवस्था की अभिव्यक्ति है और उसके विरुद्ध विक्षोभ भी। पहली दशा में असमर्थता और उत्पीड़न के प्रति मन को बांधने, दुख और दीनता तथा समाज की आत्महीन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बनाने की भावना पर लक्षित है, जबकि दूसरी दशा उत्पीड़न तथा सामाजिक असमानता का अंत करने की अभिलाषा की द्योतक है। इस अंतर विरोध के केवल एक पहलू पर बल देना मार्क्स के वक्तव्य को तोड़ने मरोड़ने के समान है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए दामोदरन आगे कहते हैं, भारत में धर्म पर आस्था सदा सामाजिक प्रगति के लिए प्रतिकूल नहीं रही। वास्तव में इसने प्रायः ही उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध का रूप धारण किया। भारत में कितने ही सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष धार्मिक सुधारों के आवरण में लड़े गए। इस प्रकार धार्मिक आंदोलनों ने विशेषकर उस समय जब वे प्रारंभिक अवस्था में थे और उन्होंने किसी पंथ या संप्रदाय का रूप धारण नहीं किया था, एक गतिपूर्ण और प्रगतिशील भूमिका ही अदा की। हमारे इतिहास के कितने ही मोड़ों पर जनता में धार्मिक शिक्षाओं के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण ने विलक्षण सृजनात्मक शक्ति को जन्म दिया, ऐसी शक्ति को जन्म दिया जो अभूतपूर्व सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक हुए। हमने श्री दामोदरन को विस्तार से यहाँ इसलिए उद्धृत किया है ताकि हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को, जो मूलतः धर्म के आवरण में साधारण जनता की सामाजिक अस्मिता के सवाल को प्रधान रूप में सामने लाया, तथा उन भक्त तथा संत कवियों को जो बावजूद एक गहरे धार्मिक विश्वास तथा आस्था के उन विश्वासों तथा आस्था के अपने सारे अंतर विरोधों को लिए दिए साधारण जनता से जुड़े रहे तथा जिन्होंने एक निहायत आक्रांता समाज में साधारण जन को मानसिक परितृप्ति तथा संतोष प्रदान किया, सही रूप में समझ और पहचान सके, प्रायः उनकी धार्मिक आस्था को उनके सही संदर्भ में न देख पाने के कारण अथवा उनके अंतर्विरोधों को सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित न कर पाने के कारण मात्र उनकी धार्मिक संपृक्ति के नाते ही हम उन्हें प्रगति तथा पतनशील मान बैठते हैं। यह एक निहायत खतरनाक किस्म का अतिवाद है जिससे हमें बचना चाहिए। उपर्युक्त सारा विवेचन मात्र इसी अतिवाद से सावधान रहने के हेतु किया गया है।